नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपरलीक के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया।
मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने के लोकसभा के प्रस्ताव का स्वागत किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनु सिंह की खंडपीठ ने यह कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने केशव कंबोज और अन्य की याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया। याचिका में दावा किया गया कि संगठित धोखाधड़ी रैकेट ने इस परीक्षा में अनियमितताएं की।
इस कथित पेपर लीक के कुछ ही घंटों के भीतर पंजाब पुलिस ने फरीदकोट, कोटकपुरा और फिरोजपुर के 25 परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई करके एक अंतरराज्यीय चीटिंग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। पुलिस ने 7 मुख्य साजिशकर्ताओं और 28 उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया था जो इस मामले में सीधे तौर पर शामिल थे। पंजाब सरकार ये कहती आ रही है कि यह घटना पारंपरिक पेपर लीक के बजाय हाईटेक चीटिंग से जुड़ी है। बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल सहित विपक्ष पार्टियों ने आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सहित पार्टी के नेतृत्व पर कथित पेपर लीक को मामूली चीटिंग का मामला बताने की कोशिश करने के लिए निशाना साधा है। विपक्षी पार्टी के नेता जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया कि बमबारी और गोलीबारी में परिसंपत्ति को भी नुकसान हुआ।
समूह ने सुरक्षा बलों पर घायल नागरिकों को हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। सैनिकों द्वारा अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सकों पर दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। कुछ घायलों की मौत उपचार न मिलने के कारण हुई। ड्रोन और कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर इलाके में गश्त करते दिखाई दिए। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस स्थिति का संज्ञान लेने तथा बलोच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। पिछले एक दशक में कबायली इलाकों में पाकिस्तान सेना के हवाई हमले और बमबारी में अनेक नागरिक मारे गए हैं। मानवाधिकार समूहों ने इन हमलों की कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान का अपने ही लोगों पर सैन्य बल इस्तेमाल का इतिहास रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ओम प्रकाश ने पाकिस्तान के हालात पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की खामोशी पर सवाल उठाया है।
पाकिस्तान सुराब में वही कर रहा है जो वो दशकों से करता आ रहा है, बलोच के साथ, पठानों के साथ, सिंधियों और कश्मीरियों के साथ। कितनी आश्चर्य की बात है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय, जो कि हर दूसरे देश में बोलता रहता है, पाकिस्तान पर आके चुप हो जाता है। एक अच्छी बात यह है कि अब बलोच, सिंधी, पठान, कश्मीरी सारे एथनिक ग्रुप्स अब मिलके आवाज उठाने लगे है, एक दूसरे के साथ ताल मिला के। ये निश्चित रूप में एक आशा का किरण है।
पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है।
कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव, क्षेत्र में हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने पर सवाल उठा रहे हैं। कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि पिछले दो महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शनों में लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आज उड़ीसा में तेज वर्षा होने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज और तेज होकर डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके असर से उत्तरी ओडिशा, खासकर बालेश्वर, मयूरभंज और केंदुझर में लगातार भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में बालेश्वर में लगभग 137 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भद्रक, अनुगुल, जाजपुर और ढेंकानाल जिलों में भी भारी बारिश हुई है। इस बीच कोरापुट जिले के नंदपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले डारे गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे।
अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये सम्मान न केवल उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानक का प्रतीक है, बल्कि कलाकारों के निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान को भी मान्यता देते हैं। अकादमी फेलो के सम्मान में 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जबकि अकादमी पुरस्कार में ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के अतिरिक्त 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फेलोशिप के लिए चुने गए लोग और पुरस्कार विजेता भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरजू के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
झारखंड में 14वीं JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का ये मुद्दा अब रांची की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद परिसर तक पहुंच गया है।
14वीं JPSC परीक्षा में कथित विसंगतियों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अभ्यर्थी पूरी तरह लामबंद हैं। इसी कड़ी में रांची में JPSC JSSC रिफॉर्म मंच की कोर कमेटी की एक अहम बैठक हुई। बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर गहन चर्चा की गई और छात्रों ने मांगे पूरी होने तक अपना प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प दोहराया। उधर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पिछले दिनों हुए लाठीचार्ज का मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन कर झारखंड सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध जताया और पूरे विवाद की CBI जांच कराने की मांग दोहराई। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम।
केरल में आज 3 स्थानों पर सशस्त्र बल के बैंड संगीत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में ये संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
नौसेना और वायुसेना आज तिरुवनंतपुरम, कणूर और कोची में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए बैंड का प्रदर्शन करेगी। इसमें तालमेल और अनुशासन के साथ देशभक्ति और लोकप्रिय गानों का प्रदर्शन होगा। वायुसेना का बैंड तिरुवनंतपुरम के निशा गांधी में, कोची सदर नेवल कमांड बैंड एर्नाकुलम के लुलू मॉल में और AG माला नेवल अकेडमी बैंड कणूर के थाजे चोबा में प्रदर्शन करेगा। ये कार्यक्रम आज शाम 6 बजे शुरू होंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मिति M. पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मनहास ने कहा कि बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास में सहयोग करने और अफगानी खिलाड़ियों को उच्चतम प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान ने इस वर्ष जून में भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला खेली थी। दोनों टीमों ने जनवरी 2024 में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला भी खेली थी। भारत ने 2018 में अफगानिस्तान के ऐतिहासिक पहले क्रिकेट टेस्ट मैच की मेजबानी की थी और तब से दोनों टीमें विभिन्न प्रारूपों में नियमित रूप से परस्पर मैच खेलती रही हैं। समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
धन्यवाद फरहत। संसद के मानसून सत्र में छात्रों के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के शब्द सभी अखबारों ने प्रकाशित किए हैं। अमर उजाला लिखता है, संसद में हर मुद्दे पर जवाब दूंगा, विपक्ष बहस शुरू करे। पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोप साबित, संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। लोकसभा जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जलते नोट सुलगते सवाल, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं को दी गई सीख प्रकाशित की है, रील के दौर में युवा शॉर्टकट नहीं मेहनत का रास्ता चुने। प्रधानमंत्री ने कहा, रेलवे स्टेशन पर लिखी बात अवश्य याद रखें, शॉर्टकट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कर्नाटक में गुटखा पान मसाला बनाने बेचने और रखने पर रोक, स्वास्थ्य के लिए सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, भारत में तंबाकू जनित बीमारियों से हर वर्ष करीब 13 लाख से अधिक मौतें होती हैं। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर शिक्षा से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर न रहें स्कूली पढ़ाई, चित्रों और शब्दों को मिलाकर अपनी कहानी गढ़ने समझने जैसी प्रक्रिया अपनाई जाए तो ये खेल खेल में सीखने जैसी प्रक्रिया होगी। दैनिक जागरण ने CBSE द्वारा पूरक परीक्षा के परिणाम जारी करने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, CBSE 12वीं की पूरक परीक्षा का परिणाम जारी, 53.8% विद्यार्थी हुए पास, डिजी लॉकर और CBSE की वेबसाइट पर देख सकते हैं परिणाम। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बच्चों को घर से निकालने का आदेश सही बताया, कहा बुजुर्गों को मिलने वाले सम्मान से ही सभ्य समाज की होती है पहचान। पीठ ने कहा, अनुभवों का खजाना होते हैं बुजुर्ग, अमर उजाला की खबर है। आज विश्व अंगदान दिवस पर नवभारत टाइम्स ने विशेष खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश में अंगदान की कमी बनी चुनौती, भारत में मृतक अंगदान की दर प्रति 10 लाख की आबादी पर 1 से कम। पत्र ने एक और सुर्खी दी है, ट्रांसप्लांट के बाद दवाएं मुफ्त देने की संसदीय समिति की सिफारिश, साल भर में जितने किडनी ट्रांसप्लांट उससे 5 गुना मरीज अब भी कतार में।
धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपर लीक के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए। और BCCI ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।